भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच बलिः एवं गृहपति कुलाचार्येण वासिता तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच अवहित गुरुं। श्रीशुक उवाच बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भासित तूष्णीभूत्वा क्षणं राजन् उवाच अवहितगुरुम्। श्रीशुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बलि महाराज बलि ने एवं इस प्रकार गृहपति गृह के स्वामी कुल आचार्येण पारिवारिक गुरु के द्वारा भाषितः संबोधित किया गया, तुष्णिम मौन भूत्वा होकर क्षणम एक क्षण के लिए, राजन हे महाराज परीक्षित उवाच कहा अवहितः पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद गुरुम अपने गुरु से। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस दुर्भी संधि में मौन रहे, वे अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे। बलि महाराज जैसे गंभीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का तुरंत पालन करे, जैसा उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य अब उनके गुरु नहीं रहे, क्योंकि वे गुरु के कर्तव्य से विमुख हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को भगवत धाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य को भगवत धाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है तो वह गुरु गुरु नहीं रह सकता। गुरु न सस्यात्। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भवबंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। गुरु कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामन देव को दिए गए वचन में से मुकर जाएं। अतएव ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरु के आदेश को अस्वीकार कर दें या फिर वे स्वतंत्र होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करें। इसमें उन्हें कुछ समय लगा, इसलिए कहा गया है तृष्णी भूत्वा क्षणम राजन उवाच अहितो गुरुम। इस विषय में तर्क वितर्क करके उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों न करनी पड़े। जिसे गुरु माना जाए किंतु जो विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध जाता हो उसे गुरु नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार किया हो तो उसे त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार से महाभारत में हुआ है। गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम जायतः उत्पत्थ प्रतिपन्न परित्यागो विधीयते। श्रीजी गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार के व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। षड कर्माणि पुनः विप्रह मंत्र तंत्र विशारद अवैषमो गुरु न सस्यात् वैष्णवा सपचो गुरु। एक विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पट्टू होते हुए भी कुल गुरु होने के योग्य नहीं है यदि वह वैष्णव नहीं है, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सॉरी, मैं समझा कि 4 बजे से है, लेकिन 4 बजे से कल है, आज नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ जी, तो अंतिम बात क्या हुई थी कल, माता जी लोग बताओ। हैं, कहाँ तक विराम किया गया था? हाँ, ऐसे स्थानों पर झूठ बोला जाए तो शास्त्र कहता है कि ये झूठ नहीं है। उसमें से कुछ कौन कौन स्थान है? स्त्री सुपति पत्नी के बीच में है, और एक एक, हाँ, बिजनेस करने में, प्राण संकट में, विवाह के पहले, गो ब्राह्मण हिताय छे, दोनों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो बलि महाराज शुक्राचार्य के सलाह को बड़ी ध्यान से सुने। यहां पर बलि महाराज को गृहपति कहा गया है। गृहपति का मतलब होता है गृहस्थ। दो होते हैं, एक गृहस्थ और एक गृहमेधी। गृहमेधी उसे कहते हैं जिनका लक्ष्य होता है घर गृहस्थी की संतुष्टि। सब काम करते हैं घर गृहस्थी की संतुष्टि के लिए। और जो गृहस्थ होते हैं, गृहपति होते हैं, वे लोग सब काम करते हैं जिससे कि घर गृहस्थी की भलाई हो। वह भलाई किसी प्रकार से क्यों न हो, दुख से सुख से, तो भलाई वाले। तो यहां पर बलि महाराज को गृहपति कहा है। बलिर एवं, एवं मतलब निश्चय ही गृहपति। कुल आचार्येण भाषित, पहले जमाने में प्रत्येक कुल के अलग अलग आचार्य होते थे। जैसे क्षत्रिय कुल के आचार्य हैं कृष्ण लीला में गर्गाचार्य, और वैश्यों के लिए हैं गर्गाचार्य, वैश्यों के नहीं हैं वो, क्षत्रियों के लिए हैं। इसीलिए कृष्ण का जब नामकरण हो रहा था तो उस समय वे नामकरण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो क्षत्रिय के कुलगुरु थे। तो अलग अलग कुलगुरु होते हैं। तो शुक्राचार्य जी असुरों के कुलगुरु हैं। जो उन्होंने बात कहा उस बात को आउट एंड आउट बलि महाराज रिएक्ट नहीं किए, उस बात पर थोड़ा विचार किए। तुष्णी भूत्वा क्षणम राजन, उनके द्वारा कहे गए बात को कुछ समय तक के लिए वे विचारे, और विचार विमर्श करने के बाद अब वे अपने गुरु से बात कह रहे हैं। इसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कोई गुरुवर्ग कुछ बात कहें तो हम लोगों को तुरंत ना नहीं बोल देना चाहिए। आजकल के नौजवान पीढ़ी जब बाप माँ कुछ सलाह देते हैं, गुरुवर को सलाह देते हैं, तुरंत नो सोचते नहीं हैं। थोड़ा विचार करना चाहिए, उसके बाद में जो भी कहना है वो कहें। इससे क्या होता है, यह रिस्पेक्ट जनाता है। हाँ, वैश्यों के गुरु थे सांडिल्य मुनि, सॉरी कभी कभी रहता है लेकिन बाहर नहीं आता है, सांडिल्य मुनि थे, और क्षत्रियों के थे गर्गाचार्य। तो इसे ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को बड़े लोगों का, बुजुर्गों के द्वारा कहे गए बात पर विचार करके तब जो भी बात हो उसे कहना चाहिए। तो बलि महाराज इस सिद्धांत के अनुसार कुछ समय तक रुक करके उस पर विचार किए, उसके बाद कहने लगे। अब देखिए क्या क्या विचार किए हैं। आचार्य लोग कहते हैं कि बलि महाराज को मालूम नहीं था कि वामन देव भगवान है। पहला नंबर, तो वे तो उनको ब्राह्मण के रूप में देखे और बड़ा स्पेशल ब्राह्मण देखे, और स्पेशल ब्राह्मण देख करके उनका पूजा किए, क्योंकि जैसा कि मैं बताया था कि जो असुर लोग होते हैं वो प्रायः ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और विष्णु का अनादर करते हैं। मैं इस संबंध में जरासंध का भी उदाहरण दिया था, वैसे ही बलि महाराज के पिताजी, बलि महाराज, सब लोग वैसे हैं। तो वामन देव को वो ब्राह्मण समझ कर करके और बलि अब तक से सब कर रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य ही थे जो कि भंडा फोड़े। उन्होंने ही कहा कि अरे बैरोचन, तुमको मालूम नहीं है, ये छोटा बच्चा देखने में ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, विष्णुर अव्यय है, ये साक्षात अव्यय विष्णु है जो कि कश्यप और अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। देवानाम कार्य साधनम, देवताओं के कार्य को साधन करने के लिए, देवताओं के कार्य के लिए यह जन्म लिया है। तो गुरु का काम है शिष्य को भगवान के विषय में बताया बताना। तो अब तक से शुक्राचार्य यही बताते आए हैं कि हमें सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए, और अब भगवान सामने आ गए हैं। बलि महाराज सोचा कि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि भगवान है, एक गुरु जी ही बताए कि भगवान है, और भगवान मांग रहे हैं तो मैं कैसे इनको ना बोलूं। अब तक से गुरु जी कहे कि भगवान को दो, भगवान को दो, भगवान को दो। तो इनकी जो बातें हैं वह एक दूसरे से टकरा रही है, कंफ्यूजन कर रही है। एक हाथ में पहले हफ्ते से कहते हैं कि देना चाहिए, अभी कहते हैं मत दो। तो ऐसे परिस्थिति जब भी आए तो हमें हृदय का बात सुनना चाहिए, दिल का बात सुनना चाहिए जब भी ऐसे हो तो, और उसके लिए बुद्धि से हट करके दिल के पास जाना चाहिए, जिसके लिए बलि महाराज भी गए और कुछ समय लगा। इसे कहते हैं क्षणम, एक क्षण तक, एक क्षण के लिए शांत रहे, उसके बाद सोच समझ करके तब बोल रहे हैं। श्री बलिरुवाच सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो अयम गृह मेधिनाम अर्थ काम जसो वृत्ति यो न बाधेत कर्हचित। कहते हैं गुरुदेव, आपने जो बात कहा है शत 100% सत्य बात कहा है, लेकिन ऐसी बात उन लोगों के लिए है जो गृहमेधी है, जिनका बुद्धि केवल घर गृहस्थी में लगा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी बलि महाराज को कहते हैं गृहपति, वे गृहस्थ हैं। यहां पर कहते हैं कि वो गृहमेधियों के लिए आपका बात सही है, क्योंकि जिस धर्म का आप बात कर रहे हैं वह धर्म किस लिए है? अर्थ, काम, जस और वृत्ति के लिए है। तो गृहस्थों के लिए यह उचित धर्म आपने बताया, यानी हमारे ऊपर यह धर्म नहीं लागू होता है। इनडायरेक्टली उन्होंने यही बात कहा। शौचाहम वितलोभेन प्रत्यक्षाए कथम द्विज प्रतिश्रुत्वा ददामीति प्रहलादी कितवो यथा। देखिए, बलि महाराज के सामने धर्म संकट आ गया था। एक तरफ धर्म संकट था अपने वचन को निभाना, जो वचन वे दे दिए थे। ब्राह्मण बटु को कहे थे कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, और दूसरे तरफ गुरु जी कह रहे हैं कि मत दो। इस दोनों के विषय में सही बात क्या है, इस बात को यहां पर इस अध्याय में प्रकाशित किया गया है। ऐसा ही धर्म संकट वसुदेव जी के पास आ गया था एक बार, जब कंस देवकी को मारने जा रहा था, तो वसुदेव जी सब प्रकार से प्रयास किए देवकी का रक्षा करने के लिए, क्योंकि वे देवकी के अब पति हो चुके थे। अच्छा अच्छा सलाह दिए कंस को। जब कंस बिल्कुल तुला हुआ था देवकी को मारने के लिए, टस से मस नहीं हो रहा था, तो वसुदेव जी ने सोचा कि जब तक से व्यक्ति की बल बुद्धि काम करती है तब तक से व्यक्ति को चाहिए, प्रयास करना चाहिए वर्षक, कि हम अपने डिपेंडेंट का रक्षा कर सके। इतना करने के बाद भी यदि नहीं हो पाता है तो उसमें उस व्यक्ति का कोई गलती नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारे कोई पूर्वज हैं, माता हैं, पिताजी हैं, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, हम जानते हैं कि मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी पैसा खर्चा करते हैं। जितना दिन जीवित हैं पैसा खर्चा कर, जब तक से सांस तब तक से आस आस लगा हुआ है, और हम पैसा खर्चा करते हैं उनका रक्षा करने के लिए। यहां बताया गया कि बल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और बल बुद्धि में भी हमें धर्म संकट में बुद्धि का प्रयोग पहले करना चाहिए, बल लास्ट में। हम देखते हैं कि कंस बल का प्रयोग किया, जब आकाशवाणी वो सुना कि देवकी का सातवां आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो तुरंत देवकी का बाल पकड़ लिया, तलवार निकाला देवकी गला काटने के लिए, वह बल का प्रयोग कर रहा था, लेकिन वसुदेव जी बुद्धि का प्रयोग किए, समझाने का प्रयास किए। हालांकि वसुदेव जी कंस से बहुत शक्तिशाली थे, कंस वसुदेव जी के सामने कुछ भी नहीं था, वसुदेव जी भगवान के अंश थे, अनक दुंदवी थे, कंस शक्तिशाली थे, लेकिन वसुदेव जी कभी शक्ति का प्रयोग नहीं किए कंस के साथ में, बुद्धि का प्रयोग किए। और परिणाम हम देखते हैं कि जो शक्ति का प्रयोग पहले किया वह हारा, और जो बुद्धि का प्रयोग किया वह जीता। तो इसलिए ऐसे धर्म संकट में हमें सदैव बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तब वसुदेव जी कंस को अंत में वचन दिए कि भाई देखो कंस, तुम सोचो, आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो यह प्रमाणित करता है कि देवकी तुम्हारी काल नहीं है, देवकी का बच्चा तुम्हारा काल होगा, तो देवकी को छोड़ दो। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जितने बच्चे होंगे सबको, आठवां क्या, मैं सबको ला करके तुमको दूंगा। देवकी और वसुदेव का प्रथम बेटा हुआ जिसका नाम था कीर्तमंत, उसको लेकर के वसुदेव जी अब जा रहे हैं। वसुदेव जी ठीक वैसे ही धर्म संकट में पड़ गए थे जैसे बलि महाराज यहां पर पड़ गए। एक तरफ था कि बेटा है, बेटा का रक्षा करना बाप का काम है, बाप का धर्म है अपने बच्चों का रक्षा करना, और दूसरे तरफ वे वचन दे चुके थे कि मैं देवकी के समस्त पुत्रों को ला करके दूंगा। तो एक तरफ अपने वचन का रक्षा करना, तो वचन का रक्षा करना और अपने संतान का रक्षा करना, दोनों धर्म था, दोनों में से एक को चुनना था। सब बाप मां जितने बच्चे होते हैं जिगर के टुकड़े होते हैं बाप मां के लिए। वसुदेव जी सोचे कि मैं क्या करूं ऐसे धर्म संकट में, तो विचार करके वे इस निर्णय पर आए कि जो ये बच्चा है इसका जो संबंध है वो मेरे देह से है, मेरा बच्चा है, लेकिन जो मेरा वचन है सत्य वचन, सत्य वचन का संबंध भगवान से है। बच्चे का संबंध मेरे देह से है और मेरे वचन का संबंध भगवान से है, इसलिए ये देह टेम्पररी है, संबंध भी टेम्पररी है। भगवान अव्यय हैं, अनित्य हैं, इसलिए भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो अभी अव्यय है और अनित्य है, इसलिए हमें वह वचन पालन करना चाहिए, यानी सत्य वचन को अपनाना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी अपने पुत्र को ले जा करके और कंस को दिए। ठीक वैसे हैं यहां पर धर्म संकट है बलि महाराज के पास, एक तरफ गुरु के आदेश का पालन और दूसरे तरफ जो वचन दिए हैं देने के लिए। अरे विष्णु न भी हो, सामान्य एक ब्राह्मण भी हो, तो जो वचन दिए थे भगवान जो हैं वो सत्य के में निहित रहते हैं। देवतागण जब भगवान का प्रार्थना कर रहे थे, जब भगवान देवकी के घर में थे, तो उसमें सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यात्म जोनी निहितम च सत्य, सत्यम व्रतम सत्यात्म निहितम च सत्य, भगवान सत्य पुरुष हैं। वेदांत सूत्र कहता है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को मैं नमस्कार करता हूं, ध्यान करता हूं। तो भगवान सत्य पुरुष हैं, सत्य का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वसुदेव यहां पर बलि महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्य का पालन करने के लिए सहमत हुए, और जो गुरु के द्वारा कहा गया जो वचन था वह वचन हालांकि धर्मयुत वचन था, धर्म के अनुसार था, कि वैसे वचन के पालन करने से धर्म अर्थ काम जस वृत्ति इन सब की वृद्धि होती है, जो पांच वस्तुएं बताई गई है उन सब की वृद्धि होती है, लेकिन ये सब वस्तुएं टेम्पररी है। अर्थ कौन साथ में लेकर के गया है, वृत्ति कितना दिन जो जन्म लिया है वो जीवित रहने वाला है जिस प्रकार से अपना भरण पोषण कर सके। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने सोचा कि ये टेम्पररी है, लेकिन भगवान से संबंध जो है वह सत्य संबंध है, इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया भगवान के बात को मानने के लिए, और अपना निर्णय अब सुनाने लगे। सौ चम वित्त लोभे न, गुरुदेव आप धन का बात कर रहे हैं कि धन सर्वस्व है, धन का बहुत आपने महिमा बताया, यहां तक कहा कि जिस उदाहरण दिए वृक्ष का कि जब वृक्ष रहेगा तब तो फल देगा पत्ता देगा, लेकिन वृक्ष को काट दोगे तो फल कहाँ से आएगा, वैसे ही धन रहेगा तब तुम दान कर सकते हो, तब तुम और काम कर सकते हो, लेकिन तुम सब कुछ दे रहे हो, जब धन ही नहीं रहेगा तो दान से दोगे। कहते हैं धन का बहुत महिमा गाया आपने, तो सच अहम वित्त लोभे न प्रत्याक्षे कथम द्विजम। मैं धन के लोभ में हे गुरुदेव, मैं कैसे इस ब्राह्मण से धोखा कर सकता हूं। इस ब्राह्मण को मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं अब कैसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। भले ही आप शास्त्र का बधाई दे रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इन इन स्थानों पर झूठ बोला जा सकता है, तो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। यदि मेरे ऊपर होता शायद हो सकता था, लेकिन मैं इसको बचा चुका हूं। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर कि मैं प्रहलाद महाराज के खानदान वाला हूं। यही वामन देव पहले उनको कह दिए थे, कुलोचित धर्मजित जसस कर, मैं कहा था कुलीन बनना चाहिए, कुली नहीं बनना चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं मैं कुलीन हूं, हमारे दादाजी क्या सोचेंगे जिनका इतना ख्याति है। ख्याति प्राप्त करने के लिए, नेम फेम प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसको मैं टर्निश कैसे करूं, उनके खानदान में मैं ऐसा क्यों काम करूं जिससे कि लोग समझेंगे कि एक समान ठग है। कहें कि तबो यथा, एक समान ठग के समान मैं ऐसे व्यवहार कैसे करूं कि कह करके और मैं न दूं। बलि महाराज पर प्रहलाद जी का आशीर्वाद था, संस्कार था, और यह बात संस्कार से ही संभव है ऐसा बात कहना जैसा कि बलि महाराज कह रहे हैं। हालांकि असुर कुल में जन्मे हैं, लेकिन थे वे शुद्ध भक्त, उच्च कोटि के भक्त थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को आए हैं शास्त्रों में कि कैसे साधन भक्ति के द्वारा ये लोग उच्च कोटि को प्राप्त किए। ऐसे ही एक और उदाहरण है यज्ञ पत्नियों का। यहां पर बलि महाराज अपने गुरु का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, कब, जब वे कह रहे हैं कि विष्णु को मत दो। वैसे ही कृष्ण बलराम जब गोचारण करने के लिए गए थे तो ग्वाल बालों को बहुत भूख लगा था, तो कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों से कहे कि देखो यहां पर ब्राह्मण लोग एक यज्ञ कर रहे हैं और तुम जा करके उन ब्राह्मणों से कहना कि कृष्ण बलराम यहां पर हैं और उनको और सब ग्वाल बालों को भूख लगा है, तो यज्ञ के लिए जो सामग्री आप लोग लाए हैं, मिष्ठान पकवान इत्यादि, ये सब आप लोग दे दीजिए कृष्ण बलराम के लिए, वो लोग भूखे हैं। तो कृष्ण बलराम के कथनानुसार ग्वाल बाल लोग आए और जब ब्राह्मणों से कहे तो ब्राह्मण लोग उनको दुत्कार दिए, भगा दिए। बेचारे उदास मन से वे लोग गए कृष्ण बलराम के पास, तो कृष्ण बलराम ने कहा देखो इस बार तो तुमको भगा दिए वे लोग, ऐसा करो कि तुम लोग उनके पास मत जाओ, उनके पत्नियों के पास जाओ और उन लोगों से जाकर के कहना कि कृष्ण बलराम यहीं पर आए हुए हैं और वे लोग बड़े भूखे हैं, तो इसलिए उनके भोजन के लिए यज्ञ की जितनी सामग्री है, पकवान इत्यादि है, आप लोग दे दीजिए। अब ये लोग गए और ग्वाल बाल लोग थे बेचारे, झूठ क्यों बोले, उन्होंने कह भी दिया कि आपके पति के पास पहले हम लोग आए, वो लोग हमको मारकर भगा दिए, दिए ही नहीं, तो पूरा कृष्ण बलराम हम लोगों को आपके पास भेजे। उन पत्नियों ने तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत कहा कृष्ण बलराम को चाहिए, उन्हें भूख लगी है, ले जाओ सब, सब ले जाओ। तो एक तरह से देखा जाए तो वो लोग भी अपने पति का आज्ञा का उल्लंघन की, और शास्त्र के अनुसार पत्नी के लिए पति जो है वह गुरु होता है। तो ठीक ऐसा ही परिस्थिति वो पत्नी अवली महाराज के समान है, कृष्ण बलराम के लिए वे लोग ये दे दिए। ये उच्च कोटे वैष्णव का ये परिचय देखा जाता है, जहां तक तो ब्राह्मण लोग थे वो सामान्य सकाम कर्मी थे, उसी में लगे हुए थे जैसे शुक्राचार्य जी। तब जब इस प्रकार से बात कहने लगे और बड़े सादर बात कह रहे थे, बड़े सम्मान के साथ शुक्राचार्य से बात कह रहे थे, अब कहते हैं नहीं असत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वसोढ़ु मलम मन्ने रीतम रीते अलिक रीते अलिक परम नरम। कहते हैं गुरुदेव न ही असत्यात् परो अधर्म, हे गुरुदेव असत्य से बढ़कर के कोई बड़ा अधर्म नहीं है। सबसे बड़ा अधर्म यदि है तो वह है झूठ बोलना, असत्य। इसका प्रमाण है इति ही उवाच भूरियम, माता पृथ्वी कहती है कि मैं सबका भार ढो सकती हूं, लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका भार नहीं ढो, जो अत्यंत जघन्य झूठ बोलता है, झूठा बिल्कुल जो नकार जाता है, वैसे मनुष्य का भार मैं नहीं ढो सकती हूं, झूठे लोगों का भार नहीं ढो सकती हूं। पहले लोग कहते थे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद प्रियम वद इत्यादि। यह माता पृथ्वी कहती है कि मैं सबका भार ढो सकती हूं, लेकिन झूठ बोलने वालों का भार नहीं ढो सकती हूं, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, वचन दे चुका हूं। और जहां तक आपके कहने का बात है, ये तो अब तक से सफाई दे रहे थे, ये जितने भी बात शुक्राचार्य कहे थे उन प्रश्न उन बातों का यथार्थ उत्तर दे रहे थे। धन के संबंध में कहां कहां शास्त्र कहता है झूठ बोल देना चाहिए उसके संबंध में, और जहां तक गुरुदेव आप कहे हैं कि मैं तीन पग नहीं दे पाऊंगा इसलिए नरक में जाना पड़ेगा, झूठ बोला हूं इसलिए नरक में जाना पड़ेगा, बात सही है, जो झूठ बोलता है उसे नरक में जाना पड़ता है। तो कहते नाहम विभेति निरयात न अधन्यात असुखम अरवणात् न अस्थानम चोन्वात मृतो यथा विप्र प्रलंबनात्। हे गुरुदेव जो मैं ब्राह्मण को वचन दे चुका हूं हमारे लिए सर्वोपरि वही है और सब सेकेंडरी है। नहम विभेति निरया, मैं नरक में जाने से नहीं डरता हूं। न तो आपने कहा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, अधन्यात् न तो मैं कंगाल होने से डरता हूं, न तो मैं दुख के समुद्र दुख रूपी समुद्र से डरता हूं, न अस्थानम च्यवनात् और न तो मैं अपने स्थान से च्युत होने से पदच्युत होने से डरता हूं, न तो मैं मृत्यु डरता हूं, जितना कि यथा विप्र प्रलंबनात् जितना कि ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। यानी सबसे मुझे डर है कि मैं ब्राह्मण को वचन दे करके मुकर न जाऊं, ब्राह्मण को ठगने का दोष मुझ पर न लगे। अब धन के संबंध में कहते हैं यद्यास्यति लोके यस्मिन् संपरेत धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन येन त्येत। कहते हैं गुरुदेव समय एक ऐसा चीज है जो कि सबको नष्ट करता है, समय से सब कुछ नष्ट होता है, ये देह समय से नष्ट होता है, बिल्डिंग अच्छा अच्छा बनता है लेकिन समय उसको नष्ट कर देता है। वैसे ही जितना भी कमाया हुआ धन है, ये जो संसार में पद है, ये सब कुछ समय एक दिन सबसे बिलग कर देगा सबको। यानी वह समय आएगा मृत्यु के रूप में, जिस समय सब कुछ हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक से जीवन है तब तक से कुछ अच्छा काम क्यों न कर लें। जब धन है अपने पास तो ब्राह्मण को दे करके, मृत्यु से पहले ब्राह्मण को दे करके संतुष्ट क्यों ना हो ले, इसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बड़ा गोपनीय बात है कि जब अपने पास धन है तो उसे जस करना चाहिए। धन जस करने के लिए है। आजकल कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो धन के साथ में यक्ष के समान जुड़े रहते हैं। जिसको कमाए हैं वह नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो हमको भगवान ने दिया है, जैसे शरीर, शरीर हमारा कमाई नहीं है, भले हमारे कर्म फल के अनुसार प्राप्त हुआ है लेकिन भगवान दिए हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं वो मृत्यु से पहले कहते हैं कि मैं अपना आंख डोनेट करूंगा, मैं अपना लीवर डोनेट करूंगा, और क्या का अंग, शरीर का अंग। इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, पता नहीं यहाँ चलता है कि नहीं। हम लोगों का क्या अधिकार है ये डोनेट करने का? अरे भगवान ने एक अच्छा शरीर दिया है, जैसे दिया है मर्ग वैसे उस पुरुष को करो। तो भगवान का वस्तु हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन जो हम लोग एकत्र किए हैं धन, उस धन को नहीं देना चाहते हैं। इतने आसक्त रहते हैं, मरने के बाद पता नहीं बेटा वो धन क्या करेगा, शराब पी करके खराब कर देगा कि जुआ खेल करके गंवा डालेगा, पता नहीं क्या करेगा। जब तक से होश हवास है व्यक्ति को चाहिए कि उसे इस प्रकार से दान दे करके, ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण को, भगवान को दान दे करके जस कमाए। तस्या त्याग्यो निमित्ते किम विप्रह तुसेन चेत चेन चेत। कहते हैं जब खत्म ही होने वाला है एक दिन, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि खत्म होने से पहले ब्राह्मण को दे करके और कुछ क्रेडिट ले लिया जाए। जाना तो है, खत्म तो होना ही है, इसलिए दे देना चाहिए। अब कई एक उदाहरण पेश करते हैं। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानि साधवो दुष्ट दुष्टजासुभिः दधीचि शिवि प्रभृतम कह विकल्प धरादिषु। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानि, यदि हमसे किसी प्राणी का भलाई हो सके तो हमें वह काम करना चाहिए। हमारे आचरण से, हमारे चाल चलन से, हमारे धन से, किसी ही वस्तु से यदि किसी का कल्याण हो सके तो हमें वह करना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न करना पड़े। दुस्तज्य आंसू भी, चाहे वो प्राण भी क्यों न देना पड़े। यदि प्राण देकर भी दूसरे का भलाई हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। उदाहरण दिए हैं दधीचि ऋषि का और शिवी का। दधीचि ऋषि जब वृत्रासुर प्रकट हुए थे, उस समय सब देवता लोग भय से कांप रहे थे। ब्रह्मा जी के पास गए, तपस्या करने क्षीर सागर पर गए। बाद में भगवान ने कहा कि इस समय वृत्रासुर को वध नहीं किया जा सकता है। यदि हो सकता है वृत्रासुर का वध, तो एकमात्र दधीचि ऋषि के पास कोई जाए और दधीचि ऋषि से उनका शरीर मांगे और उनके हड्डी से वज्र बनेगा और उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर को मार सकता है। तो इंद्र ने बल्कि कहा ब्रह्मा जी से कि क्या दधीचि ऋषि अपना शरीर देंगे? कोई अपना शरीर नहीं देना चाहेगा। भगवान ने कहा कि हाँ देंगे, आप लोग जाइए, चिंता मत कीजिए। यदि नहीं देंगे तो आप लोग कह देना कि मैंने भेजा है, तब जरूर दे देंगे। और भगवान ने अभी कहा कि इंद्र देखो तुम सामने मत जाना, दधीचि ऋषि के सामने तुम भेजना अश्विनी कुमारों को, इनके द्वारा वे शरीर देंगे। क्योंकि एक इसमें भी एक कथा है कि एक बार ये जो अश्विनी कुमार हैं उनके पास दधीचि ऋषि के पास गए थे। दधीचि ऋषि बड़े महान वैष्णव हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो उनसे ये लोग भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, विद्या प्राप्त करना चाहते थे, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। दधीचि जी ने कहा कि देखो अभी मैं एक यज्ञ संपन्न कर रहा हूं, जय श्री श्री गौरताई की जाए। अभी मैं नहीं कर सकता हूं, तुम लोग जाओ और इतना दिन के बाद तुम लोग आना और मैं तुम लोगों को यह ज्ञान दूंगा। अब यह बात, इस बात का पता चल गया इंद्र को, तो इंद्र भी दधीचि ऋषि के पास पहुंच गया और कहा कि मैंने सुना है कि आप अश्विनी कुमारों को भगवत भक्ति का ज्ञान देना चाहते हैं, आपने वचन दिया है। तो दधीचि ने कहा हाँ हमारे पास आए थे, मैंने उनको वचन दिया है, अभी मैं कुछ यज्ञ कर रहा हूं, यज्ञ के बाद उनको दूंगा। तो इंद्र को भय हो गया कि यदि वो लोग भक्त बन जाएंगे तो हमसे ऊपर हो जाएंगे है? तो उसने कहा कि नहीं, आप यह ज्ञान नहीं दे सकते, आप यदि यह ज्ञान देंगे तो मैं आपका गला काट डालूंगा। तो इतना धमकी दे करके इंद्र चला गया। कालांतर में जब अश्विनी कुमार आए वो विद्या प्राप्त करने के लिए, तो दधीचि जी सब बात बतलाए क्या क्या हुआ था, इंद्र आकर के धमकी दे करके गया है। तो उन कुमारों ने कहा इसका चिंता आप मत कीजिए, हम लोग एक्सपर्ट वैद्य हैं, हम क्या करते हैं पहले आपका गला काट देते हैं और जो भी प्राणी दिखाई पड़ता है पहले उसका गला काटकर आपके गला में लगा देंगे और आप हम लोगों को ज्ञान देना, बाद में इंद्र आएगा तो आपका वो गला काट डालेगा और हम फिर आपका गला उस पर जोड़ देंगे। तो वहां एक घोड़ा चर रहा था, तो वे लोग दधीचि ऋषि मान गए, तो घोड़े का गला काट कर लाए लोग और दधीचि ऋषि के सिर पर धड़ पर रख दिए, उनका सिर हटा लिए थे। तो दधीचि ऋषि घोड़े के मुख से ये ज्ञान दिए, इसलिए भागवत विद्या को अश्वशिरा विद्या भी कहा जाता है, घोड़े के सिर से जो दिया गया ज्ञान है। और बाद में कालांतर में इंद्र आया, तो निर्लज था इंद्र, तो वह उनका गला काट दिया जो कि घोड़े का जो सिर था, और बाद में अश्विनी कुमारों ने इसे लगा करके दधीचि को ठीक कर दिया। तो भगवान एक तरह से याद दिलाना चाहते हैं इंद्र को कि तुम निर्लज है, तुम मत जाना, तुमको देखेंगे दधीचि तो शायद याद आ जाएगी, इसलिए अपना ये देह नहीं देंगे। इसलिए अच्छा हुआ कि तुम लोग अश्विनी कुमारों को भेजना, क्योंकि अश्विनी कुमार उनके शिष्य हैं, तो गुरु के लिए शिष्य, बाप के लिए पुत्र बड़े प्रेम के होते हैं, गुरु शिष्य में बड़ा संबंध होता है, बाप और बेटे में संबंध होता है, बाप बेटा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके भलाई के लिए जिसमें भलाई हो। वैसे ही दधीचि ऋषि यदि अश्विनी कुमार मांगेंगे तो सिर दे दें, अपना शरीर दे देंगे। तो छठम स्कंद में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से देवता लोग गए थे और शरीर मांग रहे थे। दधीचि ऋषि पहले तो फटकार दिए, लेकिन देवताओं से कहे कि देह के विषय में कि देह कितना दुर्लभ है, कोई अपना देह नहीं देना चाहता है। तब देवताओं ने कहा कि हे ऋषिवर, आप यदि हम लोगों का दुख जान लेते तो रहते हुए भी ना नहीं बोलते, आप समर्थ हैं देह देने में, यदि हम लोगों का दुख समझते तो आप ना नहीं बोलते। ललित जी ने कहा कि मैं तो मुझे दे ऐसे कोई आसक्ति नहीं है, मैं तो दे देने तैयार था, मैं तो आप लोगों से कुछ धर्म ज्ञान सीखना चाहता था, इसलिए ना बोला था। अंत ददित जी अपना शरीर दे दीजिए। उसी प्रकार से महाराज शिवी, महाभारत में यह कथा है महाराज शिवी का, कि किस प्रकार से उनके एक बार उनकी परीक्षा देवता लोग ले रहे थे, और एक बाज को एक एक बाज एक पक्षी को का पीछा कर रहा था, मारना चाहता था। वह पक्षी महाराज शिव के शरण में आ गए और वो बाज कहता था कि ये मेरा शिकार है। महाराज शिव ने कहा कि मेरे शरण में आ गया है तो ठीक है। वो जंघे पर आकर बैठ गया था तो कहे कि जितना इसका भार होगा उतना तुमको मैं माफ दूंगा, लेकिन इस शरणागत को तुम छोड़ दो। तो जब तौला जाने लगा तो एक तरफ से पक्षी बैठाए गए थे कबूतर, और इधर से मांस काटकर डाल रहे थे, लेकिन जितना ही मांस डाले वो कम ही होता था। एक तरह से ऑलमोस्ट पूरे शरीर का मांस डाल दिए। तब बाद में वहां पर देवता लोग आए और महाराज शिवी को आशीर्वाद दिए, ताकि महाराज शिवी भी अपना शरीर दे दिए। तो इतिहास इसका साक्षी है, जब ऐसे लोग अपना शरीर तक दे देते हैं, शरीर सबके लिए प्रिय होता है। दधीचि और शिवी दोनों अपना शरीर दिए हैं हे गुरुदेव। तो को विकल्प हो धरा दिशु, जब ये लोग शरीर दे सकते हैं तो धन आदि देने में क्या सोचना है। ये भूमि को क्यों नहीं त्याग सकते हैं, धन को क्यों नहीं दे सकते हैं, इस यह कोई विचार करने योग्य वस्तु नहीं है। क्योंकि धन जो है वो देह से उत्पन्न होता है, देह धन से उत्पन्न नहीं होता है। हम लोग धन अर्जन करते हैं देह से, कठिन परिश्रम कर करके धन कमाते हैं। तो धन से देह ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कीमती है। लोग धन लगाते हैं देह का रक्षा करने के लिए, लेकिन आजकल लोग देह गंवाते हैं धन का रक्षा करने के लिए। धन कमाने के लिए न तो खाने का समय है, न सोने का समय है, सब कुछ प्रयोग करते हैं, उल्टा बिल्कुल चल रहा है। फिर कहते हैं यदि मैं हां करके ना करूं तो मेरा अपजस होगा, और यदि मैं देता हूं तो मेरा जस होगा। और शास्त्र कहता है कीर्ति जस सा जीवती है, इसके पास कीर्ति है वही जीवित रहता है। जहां तक कंगाल होने का आप बात कह रहे हैं, बड़े बड़े जो मनस्वी लोग हैं, ये बड़ा फेमस श्लोक है भागवतम का, मनस्विनः कारुण कस्य शोभनम यदर्थि कामोपहने तदुर्गति कुतः पुनः ब्रह्म विदा भवादिशाम ततो बटोर्यस्तदामि वांछितम। जो मनस्वी लोग हैं, जो उदार चरित्र वाले हैं, जो अत्यंत दयालु लोग हैं, उनके शरण में कोई भी चला जाता है, यद अर्थित काम अपयेनः कम उपयेनः, यदि कोई अर्थी व्यक्ति है, भिखमंगा है, उनके शरण में जाता है धन की कामना से, हालांकि वे जानते हैं कि इसका दुरुपयोग वो कर रहा है, जिसके चलते दुर्गति होगी, लेकिन फिर भी वे मनस्वी लोग हैं, दयालु लोग हैं, वे दे देते हैं। इस भी जानते हुए कि उसके दान देने से दुर्गति होगी तो भी देते हैं। तो फिर ये तो फर्स्ट क्लास का ब्राह्मण है, कुतः पुरम ब्रह्म विदा भवादिशम, और ये तो ब्राह्मण है तो इसके विषय में कहना ही क्या है। इसलिए अब क्लियर करते हैं, ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। इसलिए गुरुदेव आप इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि मैं दृढ़ निश्चय कर लिया हूं कि मैं इस ब्रह्मचारी को मुंह मांगा दान अवश्य दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े, भले मैं कंगाल हो जाऊं तो वाह, कंगाल हो जाऊं तो क्या। संसार में लोग जब धन लुटा देते हैं वेश्यावृत्ति कर करके, शराब पी करके, या बिजनेस में धन लुटा देते हैं, लोग गाली देते हैं, कहते हैं कैसा बदमाश आदमी है, ये पूरा बाप दादा का कमाया हुआ धन लुटा दिया है, पाप काम में लगा दिया, ये पापी है। व्यापार में कोई व्यक्ति धन लुटा देता है, ये बच्चे क्या समझते हैं? नो यू हियर अदरवाइज गो आउटसाइड। व्यापार में कोई धन गंवा डालता है, कहते हैं व्यापार करना नहीं जानता है। व्यसन में कोई धन गंवा डालता है, लोग गाली देते हैं। यदि कोई कंगाल बन जाता है व्यसन कर करके, कोई कंगाल बन जाता है जुआ खेल करके, कोई कंगाल बन जाता है बिजनेस में धन लुटा करके, लोग गाली देते हैं। लेकिन कोई भगवान को दे करके कंगाल बन जाता है तो लोग उसका जस गाते हैं, वाह कितना अच्छा आदमी है, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, लोग जस गाते हैं। कंगाल बन गया और भगवान को सब कुछ दे दिया, लोग जस गाते हैं। इसीलिए बलि महाराज यहां पर इस बात पर निर्णय पर आए कि जो मनस्वी लोग हैं, कुतः पुनः ब्रह्म विदा भवादिशम ततो बटोरेश दाम वांचितम, भले आज मैं कंगाल क्यों न बन जाऊंगा लेकिन मैं इस ब्राह्मण को इसके इच्छा अनुसार मुंह मांगा बर जरूर दूंगा, अपने जो मैं वचन दिया हूं उसको मैं पालन करूंगा और इसको मैं जमीन दूंगा। फिर कहते हैं कि गुरुदेव आप कह रहे हैं कि विष्णु है, यदि आप विष्णु भी हैं, यद्यपि असौ अधर्मेण माम बद्ध नियताम अनागसम तथापि एनम न हिंसेस भीतम तत्तनु तरुम रिपुम। आप कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु है, लेकिन विष्णु है फिर भी वो डर गया है, डर करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है, विष्णु के रूप में नहीं आया है, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आया। यदि यह विष्णु नहीं है तो लड़ाई होगी तो मैं इसे मार डालूंगा, और यदि विष्णु है तो यह मुझे मारेगा। एक बात देने का कारण बता रहे हैं क्यों नहीं, क्यों देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं एस वा उत्तम श्लोको न जिहासति यज्ञस हत्वा मैनम हरे युद्धे सहितम निहतो मया। कहते हैं यदि विष्णु है तो अपने जस को कभी खत्म नहीं होने देगा, भगवान अपने जस से कभी च्युत नहीं होते हैं, उनका नाम है उत्तम श्लोक है। यदि यह विष्णु है और यह चाहते हैं धन लेना तो मैं दूं तो भी या न दूं तो भी ये जरूर लेंगे, ये लेने के लिए आए हैं गुरुदेव, ये आप मत भूलिए, ये लेने के लिए आए हैं, मैं दूं तो भी लोगे लेंगे और न दूं तो मुझे युद्ध में परास्त कर करके लेंगे, तो युद्ध में परास्त करेंगे तो मेरा धन भी जाएगा, मेरा जस भी जाएगा और मेरा जान भी जा सकता है, तीनों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन पहला नंबर तो छोटे ब्राह्मण के रूप में आए हैं, आप कह रहे हैं कि विष्णु है इसलिए मैं भी मान रहा हूं विष्णु है, तो आपने ही कहा है कि विष्णु है तो लेना चाहते हैं तो लेंगे ही, तो मैं क्यों ना रक्षा करूं, कम से कम देने से जस प्राप्त होगा, देने से धन की कमी नहीं होगी और मैं जीवित रहूंगा, तो इसलिए अच्छा है कि मैं इनको दे दूं। तो इस प्रकार से विचार करके वे दृढ़ निश्चय हो गए कि अब मैं इनको दूंगा। तो थोड़ा कीर्तन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुरु जी के आदेश का पालन न करते हुए वह देने के लिए तैयार हो गए कि नहीं मैं दूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना फाइनल डिसीजन बतला दिए कि मैं दूंगा, जो भी होगा मैं दूंगा। श्री शुक उवाच एवं अश्रद्धित शिष्यम अनादेश करम गुरु सशाप दैव प्रहित सत्य संध मनस्विनम। इस प्रकार से शुक्राचार्य ने देखा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखा कि यह गुरु का आज्ञा पालन कर रहा है। सुखदेव कहते हैं कि गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, आदेश करम अनादेश करम, आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो गुरु जी श्राप, अब जब कुछ भी नहीं बचा तो वे श्राप देना चाहिए। श्राप दैव प्रहित, दैव प्रहित बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान की प्रेरणा से वे श्राप देना चाहे। देखिए यहां पर सब शुक्राचार्य जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। भगवान ने उन्हें कहा कि तुम श्राप दो एक तरह से, तो वे श्राप दिए। ये सब टेस्ट कर रहे थे सब लोग बलि महाराज को कि बलि महाराज कैसे हैं, लेकिन बलि महाराज सत्य संध मनस्विनम, ये ऐसे मनस्वी थे, उनका इतना ऊंचा चरित्र था, सच्चरित्र वाले थे कि सत्य से संधि कर लिए थे। सत्य संधम, सत्य में निहित थे, सत्य में स्थित थे, अपने गुरु के श्राप से भी नहीं डरे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। संसार में जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आता है, कोई हम लोगों का बात नहीं मानता है तो हम लोगों को गुस्सा आता है। स्पेशली हमसे छोटा जो बेटा हो या छोटा भाई हो पत्नी हो, जब बात नहीं मानते तो गुस्सा आता है, हम डांटते हैं फटकारते हैं झापड़ भी दे देते हैं। तो शुक्राचार्य जब देखे कि यह मेरा बात नहीं मानेगा चेला मेरा, अब मेरे बस से बाहर हो गया, अब मेरे शासन से सीमा को अतिक्रमण किया, पार कर लिया, तब कहते हैं कि तू अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है, इतना अच्छा अच्छा तू ज्ञान दिया। वास्तव में जो ज्ञान दिए बलि महाराज बहुत महान ज्ञान था। तो अपने को ज्ञानी समझते हो तुम, ज्ञान देने आजकल पंडित बन गए हो, ज्ञान देना चाहते हो विद्वान के समान, और इस ज्ञान से तुम्हें ऐसी धृष्टता आ गई है जो कि गुरु के बातों का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। देखिए आप लोगों को याद होगा, मैं पहले दिन ही बताया था कि बलि महाराज मर चुके थे, उनका जो जीवन था शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया था। तो बलि महाराज एक तरह से ऋणी थे शुक्राचार्य के, लेकिन जो डिपेंडेंट होता है उसको हम दबा सकते हैं, लेकिन कितना दबाएंगे? बाप बेटा को दबा सकता है, बार बार यही कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुमको जन्म दिया हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं मानो, लेकिन कितना दिन बेटा बात मानेगा? एक दिन जब उल्टा सुल्टा बात कहेंगे तो एक दिन कहना पड़ेगा पिताजी भले आप जन्म दिए हैं लेकिन आई एम सॉरी, आप गलत बात कर रहे हो, मैं बात नहीं मानूंगा, आपको जो करना है करो। तो मानो वैसे ही बलि महाराज कह दिए कि आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आपका बात अब नहीं मानने वाला। तब तो शुक्राचार्य कहते हैं तो पंडित के समान बड़ा बड़ा बात करता है, जा करके हरे कृष्ण वाला क्यों नहीं हो जाता है? और वास्तव में हरे कृष्ण वाला बलि महाराज हो गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था। तो धृष्टतापूर्वक मेरा आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे आज्ञा के उल्लंघन के चलते तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे, तुम्हारा सब धन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, और झूठ बोले हो इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, नरक गामी बनोगे। तो बलि महाराज ने कहा कि अब जितना गुरु जी को कहना था करना था कर लिए। अब बलि महाराज एकनिष्ठ हो गए थे, देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो जल का कमंडलू हाथ में लेकर के और वामन भगवान के हाथ में अब जल देने ही वाले थे संकल्प करने के लिए, लेकिन शुक्राचार्य से रहा नहीं गया तो वहां से तुरंत अंतर ध्यान होकर के और जा करके और जल का जो कमंडलू था उसके टोटी में प्रवेश कर गए, हैं ब्लॉक कर दिया कि पानी न गिरने पावे। अरे जब अब संकल्प कर लिए हैं, देने वाले नहीं हैं, एक कमंडलू कामेंगे दूसरा कमंडलू लाएंगे, दूसरा पानी लाएंगे, लेकिन बुद्धि खराब हो जाने से क्या होता है। तो टोटी में कमंडलू का जो टोटी था ना ऐसे, उसमें जाकर के प्रवेश कर गए। तो भगवान वामन तो जानते थे कि शुक्राचार्य का चाल है और वो टोटी में आकर के बैठ गए हैं। तो वामन भगवान के पास जब सजाया उनको, कुछ लोग दान दे रहे थे, बृहस्पति जी उनको कुश दिए थे, आप लोगों को याद है ना, बोला था ना कुश दिए थे, तो कुश का जो अग्रभाग सुई के समान तीक्ष्ण होता है, तो वे कुश निकाले, सोचे टोटी में कुछ अटक गया है, हैं भगवान जानते थे क्या अटका हुआ है, तो टोटी में वो कुश लगा दिए। जब कुश लगाए तो शुक्राचार्य का आंख जो था उसमें आंख में चला गया, और आए 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 करते हुए शुक्राचार्य बाहर निकल गए, एक आंख से अंधे हो गए शुक्राचार्य। एक आचार्य कहते हैं कि इसीलिए भाई देखो, पति पत्नी परिवार है, यदि मान लो पति भगवान को दान देना चाहता है तो बीच में पत्नी को शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए, नहीं तो भगवान वामन देव वो कुश निकाल करके और एक आंख छेद कर देंगे, और वैसे ही यदि पत्नी देनी चाहे तो पति को भी बीच में नहीं आना चाहिए, भगवान को दे रहे हैं। तो शुक्राचार्य अंतिम प्रयास किए लेकिन सब प्रयास विफल हो गया, क्योंकि बलि महाराज सत्य संधित थे, सत्यनिष्ठ थे। भगवान का यदि हम सेवा करना चाहें तो भगवान सब प्रकार से रास्ता प्रशस्त कर देते हैं हम लोगों को, बहुत कठिनाइयां आएंगी लेकिन भगवान ही बुद्धि देंगे कि कैसे हम कठिनाइयों से ओवरकम कर सके। ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयंतिते, भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, जो लोग मेरे भक्ति में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं जिससे किस प्रकार से वे कठिनाइयों से उबर सकते हैं। तो संसार है, संसार डर्ट जरूर फेंकेगा लेकिन हमें उस डर्ट से भयभीत नहीं होना चाहिए। भक्तों को बलि महाराज के इस प्रसंग से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, भगवत भक्ति में दृढ़ता विश्वास होना चाहिए, अवश्य राखेबे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास रखें भगवान जरूर रक्षा करेंगे हम लोगों का। यदि हम एक निष्ठ भाव से अनन्य भाव से उनका सेवा करना चाहें तब तो। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि जितनी भी कठिनाइयां आती हैं वे कठिनाइयां हम लोगों के लिए स्टेयर केस बन जाती है। एक कठिनाई आई, भक्त लोग उस पर पैर रख करके आगे बढ़ते हैं, दूसरी कठिनाई आएगी पैर रखेंगे आगे बढ़ेंगे, तीसरी कठिनाई आएगी पैर रखेंगे आगे बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से स्टेप बनते जाएगा और अंततः यह जो कठिनाई है वही हमें भगवत धाम तक जाने का साधन बनेगा। तो इस संसार में माया का काम ही है, हम लोगों को दुख देना, कठिनाइयां उपस्थित करना। इस संबंध में एक कहानी कहा करता हूं। कैसे एक बार एक धोबी था और उसके पास एक गधा था। गधा बहुत बुढ़ा हो गया था। धोबी बेचारा गरीब आदमी था, उसके पास थोड़ा जमीन था और उस जमीन में एक कुआं था। कुआं सूख गया था, उसमें पानी नहीं था। एक दिन दैव योग से वह जो बुढ़ा गधा था वो कुएं में गिर पड़ा और बेचारा लगा चिल्लाने हेल्प के लिए। तो धोबी सुना कि मेरा गधा चिल्ला रहा है, वह गया तो देखा गधा कुएं में गिर पड़ा है। बाय द टाइम वो पहुंचा वहां पर कुएं के पास, बेचारा गधा चिल्लाते चिल्लाते चुप हो गया था। तो धोबी समझा कि गधा मर गया। धोबी ने सोचा कि भगवान कितनी अच्छी कृपा है, गधा बुढ़ा था, कुछ काम का नहीं था, मुफ्त में खाता था, और एक कुआं था इसमें पानी नहीं था, ये भी किसी काम का नहीं था, मैं सोच रहा था भरने के लिए। तो अच्छा हुआ कि अपना गधा अपने कुआं में गिरा। वो गांव वालों को बुलाया कि भाई गधा मेरा मर गया और उसको हम लोग बैरी करते हैं, उसको समाधि दे देते हैं यहीं पर। तो गांव वाले बेचारे सब आए अपना फावड़ा और कुदाल सब लेकर के, सब लोग मिट्टी लेकर के और कुएं में डालने लगे। जब एक का क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का उठाने वाला, मैं बिहार में खांची बोलते हैं, हैं? हाँ हाँ आप समझते हैं ना, मिट्टी उठाने का जो बर्तन था, हाँ गमला बटोही जो भी कह लो अपने भाषा में, खांची हम लोग बोलते हैं बिहार में। एनीवे तो ला करके जेव ही डालते थे मिट्टी, गधा सोचा रे ये लोग तो हमको मार डालेंगे, हैं? मैं तो हेल्प के लिए इन लोगों से पुकार लगा रहा था, ये तो मिट्टी हम पर डालना शुरू किए। तो जेव ही एक कड़ाही मिट्टी डाला तो उसने शरीर से हिला दिया, तो मिट्टी नीचे गिर गया। फिर दूसरे ने डाला, फिर शरीर हिलाया, फिर नीचे गिरा। ऐसे ऐसे वो लोग मिट्टी डालते गए, वो शरीर हिलाते गया, अंत में क्या हुआ, ये कुआं तो भर गया लेकिन गधा ऊपर आ गया। ठीक वैसे ही इस संसार में माया जो है हम लोगों पर दुख का मिट्टी डाल रही है एक के बाद एक। हम लोगों को बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जितने दुख हैं वो हमारे लिए स्टेप बनते जाएंगे और ये दुख नीचे होगा और हम लोग ऊपर होंगे। तो बलि महाराज इस सिद्धांत को जानते थे और भगवान वह बल देते हैं। तो बलि महाराज सत्संग थे, दृढ़ निश्चय थे, इस प्रकार से भगवान को बहुत सुंदर सुवर्ण का सोने का आसन देकर के भगवान को बैठाए और वहां पर उस कमंडलू को भी छोड़ दिए जिसमें शुक्राचार्य प्रवेश कर गए थे। उस कमंडलू को छोड़ दिए, वो ऑर्डिनरी कमंडलू था एक तरह से, वो यज्ञ में था। अब उनकी जो धर्म पत्नी थी जिनका नाम था विंध्यावली, वो बहुत भगवान का सेवा करना है। तो देखिए जब भी यज्ञ हो, दान हो, कोई पूजा हो, तो अकेले नहीं करना चाहिए। यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी को साथ में करना चाहिए। भगवान राम जब यज्ञ कर रहे, सीता जी नहीं थी तो सोने का सीता बनाए थे। तो यहां पर बलि महाराज अब बहुत बड़ा दान करने जा रहे थे, भगवान विष्णु को कुछ देने जा रहे थे जिनका सब कुछ है। तो पत्नी जो होती हो अर्धांगनी होती है, तो आधा अंग से दान कैसे किया जा सकता है, पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए विंध्यावली जी आई, उनका यहां पर वर्णन किया गया है कि जो जिनके गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही थी, बहुत अच्छी तरह से सज धज करके विंध्यावली जी सोने का कलश लेकर के आई भगवान का चरण धोने के लिए और संकल्प कराने के लिए, और जलपात्र जिसमें पैर धोया जाए वह और कलश लेकर के आई। और इस प्रकार से बलि महाराज भगवान वामन देव का चरण पखारे सेकेंड टाइम, पति पत्नी दोनों, और चरण धो करके उस जल को अपने शिव अपने सिर पर चढ़ाए। यजमानम स्वयं तस्य श्रीमत पादजुदम मुदा औनिज्या वहन मूर्ति तदपो विश्व पावनी, विश्व पावनी। उस औनिज्य को यानी धोए हुए जल को, चरण से चरण धोए हुए जल को, चरणामृत को, यहां पर विश्व पावनी जो संसार में संसार को मुक्त करने वाली गंगा जी के समान है चरणामृत, उसको वे पान किए और अपने शरीर पर एक तरह से अपना अपने को अभिषिक्त किए। और उससे ही बलि महाराज इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए, जब भगवान का चरण धो रहे थे तो भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे थे, एकांतिक भाव से भगवान के चरणों को वे देख रहे थे। बलि महाराज के इस दुस्साहस को देख करके स्वर्ग से देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग आकर के बलि महाराज का जय जयकारी करने लगे। गुरु के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर दिए थे बलि महाराज भगवान की सेवा के लिए। सब लोग वहां पर आकर के बलि महाराज गुणगान कर रहे थे, दुमदुमियां बज रही थी, बलि महाराज की जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार से बातें हो रही थी। देवतागण पुष्प का वर्षा कर रहे थे ऊपर से। इस प्रकार से जब बलि महाराज जब भगवान को दे दिए, संकल्प कर लिए कि हाँ मैं आपको 3 पग जमीन दूंगा, तब भगवान अब नापना शुरू किए। यहां पर पूरा अध्याय ये वर्णन किया गया है भगवान के नापने का, कि किस प्रकार से वे नाप रहे थे भगवान। सेकेंड, हाँ, वो नाप रहे थे। और बलि महाराज एक निष्ठ भाव से वामन देव के चरणों में अपना दृष्टि लगाए थे। देखिए यहां पर भरूच में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहीं पर सब घटना हो रही है, और उनके चरणों में अपना मन और दृष्टि लगाए हुए हैं। यहीं बैठे बैठे जहां जहां बलि महाराज वामन देव का चरण गया सब दर्शन किए बलि महाराज। यहां पर वर्णन किया गया भागवतम में कि बलि महाराज के राज्य का सीमा लंबाई चौड़ाई वहां तक था जहां तक सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश जाते हैं, वहां तक बलि महाराज के राज्य का लंबाई और चौड़ाई था। तो एक पग से वे नीचे तल, तलातल, सुतल, बीतल, धातल, महातल, इन सब को नापे। और बलि महाराज देख रहे थे सभी लोक लोकांतरों को, और दूसरे पैर से स्वरलोक, चरणलोक, महरलोक, तपलोक इत्यादि को नापते नापते ब्रह्मलोक तक पहुंचे। वहां पर भी देख रहे हैं बलि महाराज कि कैसे देवता लोग जहां जहां भगवान का चरण कमल गया है वहां वहां लोग भगवान का कैसे स्वागत करते हैं। ब्रह्मलोक में जब भगवान का चरण कमल पहुंचा तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों को धो रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, और बलि महाराज देख रहे थे। ये है प्रताप, भक्ति का प्रताप, ये है बलि महाराज चरणामृत केवल पान किए थे और ऐसे शुद्ध हो गए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दो चीज था, एक तो वो चरणामृत पान किए थे और शुद्ध हो गए थे, और दूसरा वे एक निष्ठ थे। जो हम भी भजन करें तो एक निष्ठ होकर के भजन करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना प्रविपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। भक्तों को त्रिकालदर्शी कहा जा सकता है, कहा जाता है, जो सब कुछ जानते हैं। यहां तक कि भगवान जहां भी आज लीला कर रहे हैं, शुद्ध भक्त लोग यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, जान सकते हैं। निकुंज जो नो रत केली सिद्धई, नहीं, श्री राधिका माधव जोर पारम माधुर जलीला गुणरूप नामना प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य मंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रतिक्षण क्षण क्षण में जहां भी भगवान की लीला हो रही है, जिस लोक लोकांतर में हो रही है, भक्त लोग यहीं बैठे बैठे और उसका दिग्दर्शन करते हैं, क्योंकि उनका मन एक निष्ठ भाव से भगवान में लगा होता है। तो भगवान जहां रहते हैं वहां भक्त लोग पहुंच जाते हैं अपने दृष्टि कर दृष्टि से एक स्थान पर बैठे हुए जो शुद्ध होते हैं। तो वैसे ही बलि महाराज बिल्कुल विशुद्ध हो गए थे चरणामृत पान कर करके, और एक निष्ठ होने के चलते जहां जहां उनका पैर गया वहां वहां दिखते गए। तो एक तरह से एक महात्मा कहते हैं कि बलि महाराज भगवान को अकेला नहीं छोड़े कि कहीं ज्यादा ना नाप लें, उनको नापना था कि अपने पैरों से नापूंगा ना, तो उनके पीछे भी चलते गए कि कितना नाप सकते हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, कितना नापेंगे। तो देखते गए, बाप रे, अब इतना बड़ा पैर, इतना बड़ा पैर, इतना बड़ा पैर, इतना बड़ा पैर, तो एक पैर से ऊपर और एक पैर से नीचे। जब सब कुछ वे नाप रहे थे अब इधर बलि महाराज के जो सेवक लोग थे वे लोग सोचे कि बामन ब्रह्मचारी ये लोग ये क्या कर रहा है, ये तो सब कुछ ले लेगा। वो लोग देखे कि ये छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया और इसका पैर भी ऊपर जाने लगा, वे लोग सब लोग लोकांतर तक नहीं गए, लेकिन बलि महाराज गए। तो देखा कि ये तो पहले तो बामन रूप धारण करके आया, बहुरूपिया है, अब ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। हमारे महाराज तो यज्ञ में लगे हुए हैं और यज्ञ के चलते किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, अब हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए महाराज के लिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वे लोग गुस्सा में आकर के अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के और दौड़े बामन भगवान पर प्रहार करने लगे, मारने के लिए। और उतने में ही भगवान के जो भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, नंद सुनंदन जय विजय प्रबल बल मुकुद विश्वक्सेन, ये लोग आकर के बात बात में उन लोगों को परास्त कर करके मारने लगे। तो बलि महाराज ने देखा कि व्यर्थ में उनके सैनी लोग ऐसा कर रहे हैं, तब बलि महाराज उन लोगों को मना किए। एक राजा ने प्रश्न किया कि जब वे एक कम मना किए, उत्तर है कि जब दोनों पग से सब कुछ नाप लिए थे तब मना किए, तब लड़ाई हो रही थी। कहते हैं, हे विप्रचित्ते, हे रामो, हे नेमे श्रुता बच माम युद्धध्व निर्वर्धम न कालो अयम अर्थकृत। हे भाई, हे विप्रचित्त, हे राहु, हे नेमी, मेरा बासमो, तुम लोग इससे लड़ाई मत करो, आज काल हम लोगों के विपरीत है। एक समय था जब सब देवता हमसे कांपते थे, हमारे अनुकूल था, अब वही काल हमारे प्रतिकूल हो गया है, इसलिए ये लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, तुम लोग लड़ाई मत करो और यह लड़ाई तुम लोग त्याग दो, छोड़ दो, इससे तुम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब इस प्रकार से बलि महाराज कहे और वे लोग लड़ाई करना बंद कर दिए, तब वहां पर गरुण जी हैं, अतः सुतः ज्ञात्वा विराटः प्रभु चिकीर्षितम् बबन्ध वारुणै पाशै बलिसुत्ते अहनीकृतौ। उसके बाद पक्षीराज गरुण, जो कि भगवान के वाहन हैं, कश्यप मुनि की दो अन्य पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनीता। तो कद्रु और विनीता में कद्रु के पुत्र सर्प लोग थे और विनीता के दो पुत्र थे अरुण और गरुण। अरुण भगवान सूर्य के वाहक हैं और गरुण जी भगवान विष्णु के वाहक हैं। अरुण जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम था संपाति और दूसरे का नाम था जटायु और संपाति, ये दो लोग थे। एक बार ये दोनों बहुत ऊपर उड़ते गए, दोनों में कंपटीशन कौन ऊपर जा सकता है, और ऑलमोस्ट सूर्य के नजदीक चले गए तो लोग जल करके गिर पड़े। इसमें जब संपाति बड़े थे और जटायु छोटे थे, तो जटायु का रक्षा करने के लिए संपाति अपना पंख फैलाए लेकिन जल गए, तो वो जल करके समुद्र के किनारे गिरे और जटायु जी दंडकारण्य में गिरे थे। एनीवे, तो विनीता के देव पुत्र थे गरुण और अरुण। तो वही गरुण जी तार्क्षसुतो मतलब विनीता के पुत्र गरुण जी, ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकित्सयः, यहां को विराट कहा गया, पक्षी राज में हैं, वे भगवान की इच्छा को समझ गए, बामन देव की इच्छा को समझ गए और बामन देव की इच्छा को समझ करके बबंध वारुणोपाशय बलि सुत्ते अहनी कृतौ। और वहीं पर जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ संपन्न भी नहीं हुआ था, बलि महाराज को वे वरुण पास से बांध लिए, बंदी बना लिए। भगवान एक तरह से बलि महाराज को खूब प्रयास किए परेशान करने का, अपने वचन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आचार विचार के द्वारा, अपने हाव भाव सब प्रकार से प्रयास किए उनको डिस्टर्ब करने का, जिससे कि उनका मन भगवान में जो लगा था वहां से उनका मन हट जाए, लेकिन बलि का मन नहीं हटा। इसे हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कि जो भी कठिनाइयां आती हैं उसको हम दो रूप में देख सकते हैं। संसार में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन इसे दो रूप देख सकते हैं। एक रूप तो यह है कि कोई चीज बाय चांस नहीं होता है। हम लोग जैसा कर्म किए थे उस कर्म के अनुसार हमें दुख या सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है जो दुख होता है वो हमारे शिक्षा के लिए होता है, और जो सुख होता है वह परीक्षा के लिए होता है। सुख में हम कैसे अपना समय बिता रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये परीक्षा का समय है। और दुख जो है वो शिक्षा का समय है, यानी हमने वह इंट्रोस्पेक्शन करने का समय होता है कि हमने क्या क्या गलती किया है जिसके चलते हमें यह दुख हुआ है। तो अपने कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति सुख या दुख भोगता है। तो दुख अनायास ही नहीं आता है, दुख आता है चूंकि हम लोग कर्म किए होते हैं। तो किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि यह सोच करके कि हमारा कुछ कर्म फल कम हो रहा है, भगवान का कृपा समझ करके उसे स्वीकार करना चाहिए। एक तो यह बात, और दूसरा बात कि कभी कभी भक्तों पर, इसे कोई प्रश्न कर सकता है कि शास्त्र कहता है कि भक्ति करने पर सब पाप सब कर्म फल खत्म हो जाते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कर्माणि निर्दहति, कर्म फल सब खत्म हो जाता है जे वहीं कोई भजन करना शुरू करता है। तो प्रश्न आता है, तब जब सब कर्म फल खत्म हो जाता है तो भक्तों पर दुख क्यों आता है? जब कर्म फल से ही दुख मिलता है तो भक्त का कर्म फल खत्म हो गया है तो फिर उसे दुख क्यों मिलता है? तो यह याद रखना चाहिए कि भक्तों पर, जितने लोग सो रहे हैं अपना हाथ उठाएं, कौन कौन लोग सो रहे हैं? सो रहे हो, सुन रहे हो? जो सो रहे हैं उनको आप लोग हेल्प कर दो, नहीं तो मैं भी सो जाऊंगा यहीं पर। ड्राइवर के सामने सोएंगे तो ड्राइवर भी सो जाएगा, फिर एक्सटेंड हो जाएगा। जिनको नींद आ रही है खड़ा हो जाए आप लोग। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था? हाँ देखिए, ये सोचने की बात है कि जो शास्त्र कहता है जो भक्ति करता है उसे कर्म फल खत्म हो जाते हैं, तो भक्तों के पास कर्म फल नहीं रहता है तो भक्तों पर भी क्यों दुख आता है? अच्छा प्रश्न है। तो भक्तों पर दुख भगवान भेजते हैं, ये भगवान की अहैतुक क्रिया कृपा है, भक्तों पर दुख भेज करके। प्रहलाद जी पर कोई कर्म फल नहीं था, ऐसा बात नहीं था कि पापी थे, पापी थे लेकिन ये भक्त बन खत्म हो गया था, लेकिन भगवान भेजते हैं कि सही में मेरा भजन करना चाहता है कि किसी काम से कर रहा है। तो भगवान स्पेशल, भगवान का कृपा है, दुख स्पेशल की कृपा है, और ऐसे ही दुख को भक्त लोग, उस दुख को दुख के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि भक्ति के रूप में देखते हैं। हनुमान जी बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है, जब नारद जी शुद्ध भक्त से मिलना चाहते थे कि शुद्ध भक्त कौन है, किसी ने कह दिया कि हनुमान जी सबसे बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान राम के सेवा में लगे रहते हैं। हनुमान जी ने कहा, किसने कह दिया कि मैं शुद्ध भक्त हूं? मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। अरे शुद्ध भक्त तो पांडव लोग हैं, जिन पांडवों पर भगवान जब उन्हें देखना चाहते हैं तो उनको विपत्ति भेज देते हैं, विपत्ति भेज देते हैं। जब विपत्ति आती है तो भगवान उनको देखने जाते हैं, कोई बहाना बना लेते हैं। तो पांडवों का जो विपत्ति है वह बड़े बड़े योगियों के द्वारा किया गया जो तपस्या है उसके फल से भी बढ़ करके है, और भक्त लोग इस विपत्ति को विपत्ति के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि भगवान के कृपा के रूप में देखते हैं। इसीलिए माता कुंती कहती है, विपदा संतु तासस्यत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे भगवान, ये विपत्तियां अहर्निश हम पर आता रहे। विश्व के हिस्ट्री में एक ही कुंती माता ऐसी भक्त हैं जो भगवान से विपत्ति मांगी है। हम लोग तो कहते हैं धन संपत्ति घर आए जय जगदीश हरे, हैं? माता कुंती धन संपत्ति नहीं मांगी है, विपत्ति मांगी है। वो साधन साधक होता है, वो बाधक नहीं होता है भगवान की सेवा में। तो बाह्य रूप से देखा जाता है कि विपत्ति है, लेकिन भगवान भक्तों को टेस्ट करने के लिए ये विपत्ति भेजते हैं, और इन्हीं विपत्तियों के लिए भागवत में वर्णन किया गया है, समाश्रितोजे पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य सो मुरारे भवाम बुधि वश्य परम पदम 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 जत विपदम नतेसाम। जो भगवान का शरण ग्रहण कर लिए हैं समाश्रित, उन लोगों पर संसार की कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आए, हैं विपत्तियां आती ही रहे, लेकिन वे लोग उस विपत्तियों के विपत्ति के रूप में नहीं देखते हैं, भगवान का कृपा देखते हैं, इसीलिए उस विपत्ति में उलझते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए विपत्तियां कैसी हो जाती है, बस पदम, वर्षा के दिन में गाय के बछड़े के खुर से एक गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी हो जाता है, तो वैसे गड्ढे को पार करना बड़ा आसान है, तो वैसी विपत्तियां जो है उस भक्त के लिए वो बस पदम पदम, लेकिन जो भगवान का शरण नहीं लिया है कर्म फल के अनुसार उसको पग पर विपत्तियां हैं। तो इस प्रकार से भगवान वामन देव लग रहा था विपत्ति यहां पर भेज रहे हैं, लेकिन बलि महाराज को उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब बलि महाराज को बांध दिया गया है वरुण पास से, जब बलि महाराज बांधे गए, हाहाकारो महानासित रुदस्यो सर्वतो दिशम, दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया और सब लोग रोदन करने लगे है, रुदस्यो ऊपर के लोग नीचे के लोग सब लोग चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्यों हुआ। यही देवता लोग जब देखे कि शुक्राचार्य का आदेश का उल्लंघन कर करके भगवान को देने के लिए बलि महाराज तत्पर हैं, इन पर पुष्प का वृष्टि किए, अब वही लोग हाहाकार मचा रहे, रो रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, है? निगृहमाणे असुरपतौ विष्णुनाम प्रविष्णुनाम। तो जब बांधे गए तो बहुत अर्तनाद हो रही थी, दुख से सब लोग विलाप कर रहे थे और कर ठीक नहीं है हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था। तम बद्ध बारुणो पासो भगवान आह बामन, नष्ट श्रिय इसित प्रज्ञ उदार जह सनिर्प। पुनः परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी हिंट कर रहे हैं, यदि आप होते तो क्या करते ऐसे परिस्थिति में, इसलिए नृप कहा गया है, है? कहते हैं कि हे नृप, हे महाराज परीक्षित, अब भगवान जब बलि महाराज को बंदी बना लिए, वरुण पास से बंदी बना ले, वे बलि महाराज से पूछने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखिए वरुण पास से बंदी बनाए गए थे, सांप यदि काट देता है, सांप काटे और सांप बांध ले किसी को, तो दोनों में से सांप के द्वारा बांधे जाना बहुत दुखदायी होता है। जब सांप हमारे अंग को बांध लेता है तो वो सांप का जो क्वाइल है वो एकदम बंधने लगता है, बंधते लगता है, बंधने लगता है, और इस प्रकार शरीर को तोड़ता रहता है, शरीर टूटने लगता है। 20 एक बार डस दे सांप तो 20 शरीर में फैल जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन ये बांध लेता है सांप और जकड़ने लगता है, जकड़ने लगता है तो शरीर का अंग अंग टूटने लगता है। कितना पीड़ा होता है उस समय, हम लोग तो केवल कल्पना कर सकते हैं, सुने हैं, यदि किसी को एक्सपीरियंस दूसरा बात है, लेकिन हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं, बहुत दुखदायी होता है। तो बलि महाराज पर देखिए, सबके सामने हुआ, सब लोग वहां पर थे, पूरा राज्य आ गया था एक तरह समझ लीजिए। जब बलि महाराज शुक्राचार्य के आदेश का उल्लंघन कर दिए तो उस समय का कम्युनिकेशन सिस्टम आज के कम्युनिकेशन से हजार गुना, उस समय का इथर बिल्कुल क्लीन था, एयर क्लीन था। आजकल इंडिया से यहां से फोन करना हो तो कभी उसमें बीच में डिस्टरबेंस आने लगता है, कहते हैं डिस्टरबेंस है क्योंकि इथर कंजस्टेड हो गया है, है? इंडिया में फोन करना हो तो लोग कहें कि सर्किट बिजी है, पूरा सब तरह से कंजेशन है, डर्टी है, लेकिन उन दिनों इथर बिल्कुल क्लीन था। आजकल माइक का जरूरत पड़ता है इतना दूर में बोलने के लिए, क्यों? कि एटमोस्फियर बहुत सघन है, डर्टी है, एक बहुत बड़ा बड़ा वाल है आप लोगों के हमारे के बीच में, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इथर इतना कंजेशन हो गया है, इतना पोल्यूटेड हो गया है, पहले क्लीन था। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे उस समय साउंड सिस्टम नहीं था, वहां पर हजारों ऋषि लोग सुन रहे थे। वैसे ही नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कथा कह रहे थे, हजारों ऋषि लोग सुन रहे थे, लेकिन ट्रांसमिशन सबके कान तक होता था, और जोर से भी नहीं बोलना, बड़ा प्रेम से बोलते थे, यहां तो चिल्लाना पड़ता है कभी कभी। तो उस समय का सब कुछ फर्स्ट क्लास, आज के साइंसिस्ट भले कितना भी ढिंढोरा पीटे कि हम लोग एडवांस हैं, लेकिन वे इतने एडवांस नहीं जितना उस समय था। तो इथर इतना क्लीन था कि फटाफट मैसेज पहुंच गया कि शुक्राचार्य का बात बलि महाराज नहीं माने और उस बटु बामन को 3 पग जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं सब लोग। साधन भी, यातायात का साधन बतना सिंपल था, फटाफट सोचे मन के गति से लोग जाते थे। आज सबसे बड़ा गति है यहाँ पर रॉकेट का है, रॉकेट का गति। उस समय लोग मन के गति से, आप इमेजिन करो, आप यहाँ हो और अपने घर इंडिया जाना चाहते हैं, मन सोचो बूम वहां पहुंच जाओ। पहले ऐसा था, मन के गति से जोगी लोग थे, फ्लोटिंग करते थे आकाश में। सब जोगी लोग आए, ऋषि लोग आए, बहुत पूरा झमेला लग गया था। आकाश में लोग बैठे थे, देख रहे थे, भूमि पर थे, करोड़ों लोग थे बलि महाराज की इसको देख रहे थे। और ए बलि महाराज जो पूरे विश्व के सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सम्राट थे, स्वर्ग पाताल भूर्भुवः स्वः तीनों उनके हाथ में था, और आज वे बेघर बन गए हैं। कहा जाता है, मैन हुज ऑनर डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। उनको डिसोन किया गया, आज गुरु ने त्याग दिया, सब कुछ हार गए जुआ में एक तरह से। उसके बाद उतना ही नहीं, वरुण पास में बंधे हुए हैं, न लेफ्ट देख सकते हैं, न राइट देख सकते हैं, न मुड़ सकते हैं, न झुक सकते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी नष्ट श्रेय, उनका धन संपत्ति तो खत्म हो ही गया था, नष्टम श्रियम उनके शरीर की कांति भी नष्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी स्थित प्रज्ञ उदार ये समनृप, हे महाराज, फिर भी वे बलि महाराज स्थित प्रज्ञ से, यानी अपने निर्णय पर बिल्कुल अटल थे, और उदार जसम, उनका जो जस था उदार था, यानी पश्चाताप नहीं था, अरे मैंने क्यों कर दिया, मैं बोल दिया होता कि तुम्हारे पैर से नहीं मेरे पैर से नापा जाएगा, ऐसा उनमें कभी सोच भी नहीं आया, इसलिए उदार जस वाले थे, दृढ़ निश्चय थे। ऐसे बलि महाराज जो कि बांधे गए थे, उनसे भगवान पूछते हैं, पदानी त्रिणिदत्तानी भूमे मह्यम तो यासुरा द्वाभ्यम क्रांत मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। यहां पर असुर कहा गया है। ये देखिए, वामन भगवान के लिए ऐसा बात कहना शोभादायी नहीं है। पहले बलि महाराज को जब भी देखिए शुरू में संबोधित किया गया है तो असुर राज कहा गया है, लेकिन अब सिंपल कहते हैं असुर, यानी जितने भी असुर हैं उसमें से तुम ही एक हो, हे असुर कहते हैं, असुर राज नहीं, त्वया असुर, तुम असुर हो, हैं त्वया असुर, हे असुर तुम्हारे द्वारा, इतना तो डिंग मारा है, पदानी त्रिणी दत्तानी भूदे भूमे मह्यम त्वया असुर, हे असुर तुमने हमको कहा था कि मैं आपको 3 पग जमीन दूंगा। मैंने एक आचार्य इसी केवल असुर शब्द पर व्याख्या किए हैं कि बलि महाराज को वचन के द्वारा बामन देव डिसोन कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होकर के। भक्त होते हैं तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना, उन पर लगता ही नहीं है। जैसे किसी का जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं, एनेस्थीसिया देकर उन्हें सामने ही हाथ काटते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वैसे ही भक्त लोग भगवत भक्ति का एनेस्थीसिया ले लिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम। और इस एनेस्थीसिया के चलते उन लोगों पर कोई संसार का दुख जो है प्रभाव नहीं डालता है। चाहे कोई गाली देता हो, चाहे मारता हो, चाहे धन सब छीन ले, अपमानित करे, कुछ भी करे, ये एनेस्थीसिया वाले व्यक्ति को काटते रहो पता नहीं चलेगा, वैसे भक्तों को पता नहीं चलता है। तो यहां पर असुर कहते हैं, त्वया असुर, तुम्हारे द्वारा हे असुर तुम्हारे द्वारा दम्भ पूर्वक 3 पग जमीन देने के लिए तूने कहा था। द्वाभ्याम क्रांतम महीम सर्वा, 2 पर मैं पूरे तुम्हारे पृथ्वी को नाप लिया हूं। तृतीयम उपकल्पय, अब तृतीय पैर कहां रखूं, साधन करो, उपाय करो, बताओ मैं कहां रहूं। अब हालांकि बलि महाराज सब देखे हैं कहां कहां नापे हैं, लेकिन फिर भी भगवान झूठ कभी नहीं बोलते हैं। भगवान बतला रहे हैं कहां कहां मैं ना पाऊं। कहते हैं यावत तपसौ गोभीर, यावत बिंदु सहोड़ भी, यावत बरसती पर्जन्य तावती भूर्यम तवम। भगवान बलि महाराज के राज्य का लंबाई चौड़ाई बतला रहे हैं। इस बात से, इस श्लोक से संसार के सब लोगों को भगवान जानना चाहते थे कि बलि महाराज कैसे थे। कहते हैं यावत तपति असौ, जहां तक सूर्य की किरण जाती है, जहां तक सूर्य चमकता रहता है, गोभी यावत इंदु सह उड़भी, और जहां तक चंद्रमा का प्रकाश प्रकाश देता है, प्रकाशमान होता है, यावत बरसती पर्जन्य, और जहां तक वर्षा बादल करते हैं, है? बादल वर्षा करते हैं, तावती भूर्यम तव, वहां तक तुम्हारा भूमि था, और इन सब भूमि को मैं 2 पग में नाप लिया हूं। पदैक एना मयः क्रांतो भूर्लोको खम दिस्तनो। भगवान यह बात इसलिए कह रहे थे कि सब लोग जान जाए। कहते हैं पदै एक महाक्रांतो, मेरे एक पैर के आक्रांत से बढ़ाने से भूर्लोक समस्त भूर्लोक को मैं नाप लिया, जिसमें खम यानी आकाश, दिशा सारी दिशाएं, तनो मेरे शरीर के द्वारा, स्वर्लोकस्ते द्वितीय न, और दूसरे लोक से लोक स्वर स्वर्ग आदि लोकों को मैंने नाप लिया। पश्यते स्तम आत्मना, और तुम तो साक्षात इसको देखे हो, पश्यते तो भगवान भी जानते थे कि बलि देख रहा है मैं कहाँ कहाँ नाप रहा हूं, तो भगवान कह दिए पश्यम ते स्वयं आत्मना, और तुमने भी देखा है कि मैं कैसे नापा हूं, तो इसमें छल नहीं है, मैं नाप लिया हूं, अब बताओ मैं कहाँ तीसरा पैर रखूं। तो भगवान ने कहा कि देखो तू गुरु का आज्ञा उल्लंघन किया है, तुम होश हवास में काम किया है, ऐसा बात नहीं कि तू कह सकते हो कि मैंने चीटिंग किया है, ठीक है ना। तुम जानता था कि क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे गुरु ने कहा था मेरे विषय में कि मैं विष्णु हूं, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि 2 पैर में सब नाप लूंगा, याद है ना तुमको। इतना होने के बावजूद भी बेटा तो डेयर कर कर कहा कि नहीं मैं करूंगा, गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया, और गुरु जी ने यह भी कहा था कि तू तीसरा पग नहीं दे पाएगा, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो भाई देखो, मुझसे मेरा गलती कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे गुरु का आज्ञा पालन करा रहा हूं। कहने प्रतिश्रुतम अदातुते निरये वास इष्यते विषम तम निरय तस्माद गुरुराम छ अनुमोदित। छ अनुमोदित, इसका अनुमोदन तुम्हारे गुरुजी ने किया था। उन्होंने कहा था कि तीसरा पैर नहीं देगा तब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। भाई तेरे गुरुजी तो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनका बात मानना हमारा काम है, है? तो मैं उनका बात मान रहा हूं, अब तुम्हें भाई नरक में जाना पड़ेगा। तीसरे पैर तुम नहीं दे सकते तीसरे पैर के लिए, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान के भक्त होते हैं वे डरते नहीं है किसी प्रकार से। जैसा कि हम लोग भागवतम से सुने हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे और उस समय महाराज चित्रकेतु जा रहे थे और ऋषियों के बीच में भगवान शिव पार्वती जी को अपने जंघे पर बैठा करके और ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे थे। तो महाराज चित्रकेतु को आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव वैष्णवों में शिरोमणि है, है? वैष्णवानाम यथाशंभु, ऐसे भगवान शिव ऐसा काम कर रहे हैं एक निर्लज व्यक्ति के समान, अपने पत्नी को जंघे पर बैठा करके, वो भी ऋषियों के बीच में कथा कर रहे हैं, सब लोग इस बात का अनुसरण करेंगे, ये उचित नहीं काम है। तो उन्होंने कहा कि अरे, आपको तो लोग संसार में गुरु समझते हैं और जब आप ऐसा काम करेंगे तो सब लोग ऐसा करेंगे, आपके लिए उचित नहीं है। इतने पर पार्वती जी से रहा नहीं गया, माता सती को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्ख कहीं का, तो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम नरक में चले जाओ, है तो सॉरी असुर जोनि को प्राप्त करो, कि भगवान शिव के विषय में बात किया है। तब वृत्रासुर तुरंत अपने विमान से उतर करके नीचे आए और माता सती के सामने हाथ जोड़ गए कि माता, आपने जो कहा है मैं इसे श्रीधारे कर रहा हूं, आपका हमारा कोई दुश्मनी है नहीं, आपने हमको श्राप दिया है, आप कौन होती हैं श्राप देने वाले, हमें अपने कर्मों के फल के अनुसार हमें श्राप मिला होगा या भगवान की कोई प्रेरणा होगी इसमें श्राप मिला हुआ है। तो वृत्रासुर के द्वारा जब मां चित्रकेतु के द्वारा जब यह भगवत बाणी सुने भगवान शिव, तो भगवान गदगद होकर के और माता सती से कहते, देख लिया आपने वैष्णवों का आचरण, देखा वैष्णव कितने अच्छे होते हैं, आप तो गुस्सा में आकर तिल मिला करके तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ तू असुर बन जाओ, लेकिन देखा आपके मुंह पर कैसे चमाटा मारा इसने। तो भगवान शिव कहते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतस्तस्न बिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेष्वी तुल्यात् अर्थ दर्शिन। कहते जो नारायण परायण है, जो कृष्ण के भक्त हैं, वे लोग न कुतस्तस्न बिव्रति, वे लोग कहीं जाने से डरते नहीं हैं, चाहे स्वर्ग हो चाहे अपवर्ग हो चाहे नरक ही क्यों ना हो, इस तीनों को वे लोग समान मानते हैं, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वैसे ही बलि महाराज को उससे कुछ भी डर नहीं था। आप लोग एक कथा भी जानते होंगे कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस संबंध में प्रभुपाद जी कथा कहते थे श्रीमति राधिका का, कि एक बार जब भगवान द्वारकाधीश जब द्वारका में निवास करते थे तो कई एक बार श्रीमति राधिका का नाम लेकर पुकारते थे, कभी कभी सोते रहते थे वहां भी राधा रानी का नाम लेते थे, कभी कभी टहलते थे वहां भी राधा रानी का नाम लेते थे। आमीन, कितना भी सती साध्वी पत्नी हो, लेकिन दूसरी स्त्री का कोई नाम लेता हो भी सपना में लेता है तो पत्नी से रहा नहीं जाएगा। रुक्मिणी जी राज लक्ष्मी हैं, सत्यभामा के सामने भगवान भूल कर भी राधा रानी का नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन रुक्मिणी जी के सामने, लेकिन रुक्मिणी जी समझदार थी, ऐसा बात नहीं है कि सत्यभामा समझदार नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान रुक्मिणी जी के सामने, क्योंकि तो रुक्मिणी जी एक दिन भगवान बैठे हुए थे, बड़े संडे का दिन था, बड़े रिलैक्स मूड में भगवान थे, तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु हम लोग सब प्रकार से आपका सेवा करने का प्रयास करते हैं, तन से मन से धन से, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं आपके सेवा में, लेकिन फिर भी आप स्वप्न में या चलते समय भी कभी कभी श्रीमती राधिका का नाम लेते रहते हैं। यह प्रमाणित करता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो राधिका करती थी हम लोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा आप हमको बता देते तो हम भी प्रयास करते उसी प्रकार से सेवा करने के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब समय आएगा तो बताऊंगा, अभी तो चलिए अपना घर का काम किया जाए, समय आएगा तो बताऊंगा। तो कुछ समय के बाद भगवान को एक बार हेडक हो गया। कई बजे तक क्लास है? 5:30 कि 6 बजे तक? नीलमणि प्रभु आप वृंदावन पहुंच गए क्या? अच्छा ओके। हाँ तो नहीं, मैं संक्षिप्त में से कह रहा हूं, आप लोग सुने ही होंगे, फिर भी कहता हूं। तो भगवान को हेडक हो गया, सब लोग प्रयास किए, उनका हेडक दूर नहीं हो रहा था। नारद जी आए, सुधर्मा सभा एकदम खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, एकदम कई एक दिन से ऐसा चल रहा था। तो नारद जी सबसे पूछ रहे थे, उद्धव जी से पूछे कहाँ है प्रभु, कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब सन्नाटा छाया हुआ है। तो उद्धव जी नारद जी को भगवान के पास लेकर गए, कहे कि भगवान को कोई बीमारी हो गई है जो राज वैद्य पकड़ नहीं पा रहे हैं, दवाई उसका दवाई नहीं, क्या बीमारी पता नहीं चलता है। तो नारद जी नड़ी देखे और सबके तरफ देख कर कहते हैं बाप रे बाप, ये बीमारी तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन दवा बड़ा आसान है। सब लोग देखने लगे कि भाई इतना बड़ा बीमारी है तो दवा भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन नारद जी कहते हैं दवा बड़ा आसान है। सब ने पूछा क्या दवा है, क्या दवा है? तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति समझता है कि मैं कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, यदि वह अपने चरण का धूल दे दे और भगवान के सिर में लगाया जाए तो इनका हेडक तुरंत दूर हो जाएगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं था, सब मुंह देख रहे थे। तो रुक्मिणी जी नारद जी को बुलाई, कहे कि बेटा नारद, तू तो धर्म का प्रचार करने वाला है, तू अधर्म का बेड़ा कब से उठा लिया, तू नहीं जानता है? अरे तुम ही सोचो कि हम क्या भगवान को प्यार नहीं करते हैं? हाँ ये भगवान प्यारे नहीं हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन अधर्म कैसे करूंगा अपने चरणों का धूल दूं उनके सिर पर लगाने के लिए? अरे उनके चरण का धूल हम लोग लगाते हैं मांग में, हैं अपने सिर पर लगाते हैं, अपटन के रूप में शरीर में लगाते हैं, हमारे पैर का धूल उनके सिर पर, बेटा ये बहुत बड़ा अधर्म होगा और इसका परिणाम जानते हो, इसके लिए नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी कहे नारायण नारायण, मैं क्या कहूं, दवा तो यही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सब सन्नाटा छाया हुआ था, कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं था। भगवान देखे नारद जी तरफ, नारद जी से कहे कि देखो भाई, यहां तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है, जाओ वृंदावन, देखो गोपियां राधा रानी और गोपियां वो हमको याद करते हैं कि वो लोग भूल गए हैं। फटाफट नारद जी वृंदावन गए, देखे यमुना किनारे राधा जी पड़ी हुई थी और कृष्ण विरह में तड़प रही थी। नारद जी आए, नारद जी का स्वागत किया, उनसे पूछिए आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं तो द्वारिका से आ रहा हूं। तो उन्होंने हालचाल पूछा तो बताया कि हालचाल तो बड़ा खराब लगता है आजकल, तो क्या हुआ? तो प्रभु को हेडक हो गया है। तो उसके लिए आपने क्या किया, कोई दवा ववा हो रहा है कि नहीं? का क्या करें वहां पर, दवा कुछ, दवा तो बड़ा आसान है, कोई करना ही नहीं चाहता है। तो राधारण ने पूछा क्या दवा है। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष सोचता है या सोचती है कि मैं भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, यदि वो अपने चरणों का धूल दे देगा तो उसका हेडक दूर हो जाएगा। राधा रानी बिना सोचे कहती है, ले जाइए, जितना चाहिए उतना ले जाओ और मेरे प्रभु के हेडक को दूर करो। नारद जी कह रहे, ग्वालिन तू जानती नहीं है भगवान वो नारायण है, तुम्हारे पैर का धूल उनके सिर पर, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि भले हम नरक में रहें लेकिन हमारे प्रभु खुश रहें, आप ले जाइए। नारद जी कहते, धन्य है श्रीमती राधिका, धन्य है। वो उठाए धूल और अपने भी शरीर में पूरा लगा लिए हैं और लेकर के धूल चले गए। जब धूल लेकर गए, गंगा जी बह रही थी, डुबकी लगाने में क्या तकलीफ है, राधा रानी का धूल चरण का लगा लिए, लेकर गए। जब भगवान देखे नारद जी आ गए, तो भगवान ने पूछा कि वहां पर धूल मिला कि नहीं। कहा, धन्य है वृंदावन, धन्य है ब्रज की गोपियां, धन्य है श्रीमती राधिका। तो सब बात होने लगा, सब लोग कान खोलकर सुन रहे, कैसे धूल मिल गया। तब नारद जी ने कहा कि मैं राधा रानी से कहा, रुक्मिणी जी आपके बात को कहा कि इसके चलते नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन राधा रानी ने कहा कि भले हम नरक में जाएं लेकिन हमारे प्रभु खुश रहें। तो भगवान को हेडक थोड़े था, भगवान कहे रुक्मिणी जी, और धूल लगाना भी नहीं पड़ा। कहे रुक्मिणी जी, आपको उत्तर मिल गया, आप पूछ रही थी ना कि राधा रानी कैसे श्रेष्ठ हैं, राधा रानी ऐसे श्रेष्ठ हैं, आपको नरक में जाने से डर है, भले मैं मरता रहूं हेडक से, आप आराम से रहो, लेकिन राधा रानी नरक में जाने के लिए तैयार है बजाय कि मैं ठीक हो जाऊं। देखा, यही अंतर है आप में और राधा रानी में। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं। तब भगवान ने कहा, विप्रलब्धोददामिति त्वयम् आहम चाढ़्यमानिनम तद्व्यलिक्फलम् भुक्तम् निरयः कतिचितम् समा। हे बलि, तू अहंकार बस नहीं होते हुए भी तीन जमीन देने के लिए तूने वचन दिया था, अब तुम्हारा वचन झूठा हो गया, केवल दो पग ही दे पाया, तीसरा पग नहीं दिया, इसलिए तुम कुछ वर्षों तक जा करके नरक में निवास करो। इतना भगवान कहे, उसके बाद बलि महाराज क्या कह रहे हैं, क्या हुआ, वह होगा इस इंटरवल के बाद में।